हमारी श्रृंखला की कड़ियाँ भाग एक का शेष अंश पृष्ठ 15। दर्पण का उपयोग तभी तक है जब तक वह किसी दूसरे की आकृति को अपने हृदय में प्रतिबिंबित करता रहा है, अन्यथा लोग उसे निरर्थक जानकर फेंक देते हैं। पुरुष के अंधानुसरण ने स्त्री के व्यक्तित्व को अपना दर्पण बनाकर उसकी उपयोगिता तो सीमित कर ही दी है, साथ ही समाज को भी अपूर्ण बना दिया। पुरुष समाज का न्याय है, स्त्री दया। पुरुष प्रतिशोध में क्रोध है, स्त्री क्षमा। पुरुष शुष्क कर्तव्य है, स्त्री सरस सहानुभूति और पुरुष बल है, स्त्री हृदय की प्रेरणा। जिस प्रकार युक्ति से कटे हुए काष्ठ के छोटे बड़े विभिन्न आकार वाले खंडों को जोड़कर हम अखंड चतुष्कोण या वृत्त बना सकते हैं, परंतु उनकी विभिन्नता नष्ट करके तथा सबको समान आकृति देकर हम उन्हें किसी पूर्ण वस्तु का आकार नहीं दे सकते। उसी प्रकार स्त्री पुरुष के प्राकृतिक मानसिक वैपरीत्य द्वारा ही हमारा समाज सामंजस्यपूर्ण और अखंड हो सकता है, उनके बिंब प्रतिबिंब भाव से नहीं। उससे समाज का दृष्टिकोण एकांगी हो जाएगा तथा जीवन की अनेक रूपता का वास्तविक मूल्य आंकना असंभव। पैराग्राफ चेंज। असंख्य विषमताओं का कारण स्त्री का अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को भूलकर विवेक शक्ति को खो देना है, उसके बिना जाने कि उसका कर्तव्य पथ निश्चित हो चुका है, जिस पर चलकर न उसे सफलता जनित गर्व का अनुभव होता है, न असफलता जनित ग्लानि का। वह अपनी सफलता या असफलता की छाया पुरुष की आत्मतृष्टि या असंतोष में देखने का प्रयत्न करती है, अपने हृदय में नहीं। पैराग्राफ चेंज। हमारे यहाँ सभी मान्यताएं हैं, परंतु मातृत्व की स्वाभाविक गरिमा से उन्नत मस्तक माता को खोज लेना सहज नहीं। असंख्य पत्नियां हैं, परंतु जीवन की प्रत्येक दिशा में साथ देने वाली अपने जीवन संगी के हृदय के रहस्यमय कोने से कोने परिचित सौभाग्य गर्विता सहधर्मचारिणियों की संख्या उंगलियों पर गिनने योग्य है। पृष्ठ 16। पैराग्राफ चेंज। अनुसरण को चरम लक्ष्य मानने वाली महिलाओं ने भी अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सतपथ नहीं खोज पाया, परंतु उस परिस्थिति में उसे खोज पाना संभव भी नहीं था। उन्हें अपने मूक छायावत निर्जीव जीवन से ऐसी मर्म व्यथा हुई कि उसके प्रतिकार के लिए उपयुक्त साधनों के आविष्कार का अवकाश ही न मिल सका, अतः उन्होंने अपने आप को पुरुषों के समान ही कठिन बना लेने की कठोर साधना आरंभ की। कहना नहीं होगा कि इसमें सफलता का अर्थ स्त्री के मधुर व्यक्तित्व को जलाकर उसकी भस्म से पुरुष की रुच मूर्ति गढ़ लेना है। फलतः आज की विद्रोहशील नारी व्यवहारिक जीवन में अधिक कठोर है, गृह में अधिक निर्मम और शुष्क, आर्थिक दृष्टि से अधिक स्वाधीन, सामाजिक क्षेत्र में अधिक स्वच्छंद, परंतु अपनी निर्धारित रेखाओं की संकीर्ण सीमा की वंदनीय है। उसकी यह धारणा की कोमलता तथा भावुकता ऐसी लौह श्रृंखलाएं हैं जो देखने तथा सुनने में ही कोमल जान पड़ती हैं, पहनने में नहीं। उसके प्रति पुरुष समाज के विवेक और हृदयहीन व्यवहार की प्रतिक्रिया मात्र है। संसार में निरंतर संघर्ष में जीवन वैसे ही कुछ कम नीरस तथा कटु नहीं है। फिर यदि उससे सारी सुकुमार भावनाओं का माधुर्य का बहिष्कार कर दिया जाए तो असीम साहसी ही उसे वहन करने में समर्थ हो सकेगा। इतर जनों के जीवन को तो उस रुचता का भार चूर चूर किए बिना न रहेगा। स्त्री की कोमलता मई सदा सहायता और सहानुभूति समाज के संतप्त जीवन के लिए शीतल अनुलेप का कार्य करती हैं, इसमें संदेह नहीं। पैराग्राफ चेंज। आवर्चीन समाज में या तो स्त्रियोचित स्वतंत्र विवेकमय व्यक्तित्व का विकास ही नहीं हो सका, या उनकी प्रत्येक भावना में, चरित्र में, कार्य में पुरुष की भावना, चरित्र और कार्य की प्रतिकृति झांकती रहती है। इसी से एक का निरादर है और दूसरे से अविराम संघर्ष। अपनी समस्त शक्तियों से पूर्ण महिमामयी महिला के सम्मुख किसी का मस्तक आदर से नत हुए बिना नहीं रह सकता। यह अनुभव की वस्तु है, तर्क की नहीं। उपेक्षा तथा अनादर वही संभव है जहाँ उपेक्षित और अनादृत व्यक्ति उपेक्षा और अनादर करने वाले के समकक्ष या उससे नूतन होता है। पृष्ठ 17। परंतु स्त्री के जिस गरिमामय व्यक्तित्व को शक्ति का नाम मिला है तथा जिसके लिए मनु को यत्रेतास्तु नपुंजयन्ते सर्वास्त्रा फला क्रिया कहना पड़ा है, वह संसार की संकीर्णता से दूर टिमटिमाते हुए ध्रुव की तरह उपेक्षा और अनादर से बहुत ऊपर तथा अस्थायी रहेगा। उसकी शक्तियों की गुणता जानने के लिए उन्हें पुरुष की शक्तियों के साथ एक तुला पर तोलने का प्रयत्न भी भ्रांति से रहित नहीं। कारण संसार की प्रत्येक वस्तु में निहित शक्ति की अभिव्यक्तियों और उसके रूपों की एकता किसी भी दशा में न संभव है, न उसे होना चाहिए। तूल अपने हल्केपन में कार्य की जो शक्ति छिपाए है, वही लोहे की कठिनता में समाहित है। जल के जल प्रवाह में जिस शक्ति का परिचय हमें मिलता है, वही पर्वत में अचलता बनकर सफलता पाती है। यदि हम अप्राकृतिक साधनों द्वारा जल को अचल या तूल को कठिन बनाकर उनकी शक्तियों से कार्य लेना चाहें तो उनका रूप तो विकृत हो ही जाएगा, साथ ही शक्तियां भी परिमित हुए बिना न रहेंगी। पैराग्राफ चेंज। आधुनिक भौतिकवाद प्रधान युग की नारी को यही दुख है कि वह पुरुष के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पाकर भी संसार के अनेक आश्चर्यों में एक बन गई है। उसके हृदय की एकांत श्रद्धा की पात्री बनने का सौभाग्य उसे प्राप्त न हो सका। संसार उसे देख विस्मय से अभिभूत होकर चकित सा ताकता रह जाता है, परंतु नतमस्तक नहीं होता। इसका कारण उस व्यक्तित्व का अभाव है जिसके सम्मुख मानव समाज को बालक के समान स्वयं ही झुक जाना पड़ता है। पैराग्राफ चेंज। किसी किसी की धारणा है कि अपने सर्वोत्तमुखी विकास के उपरांत स्त्री का पर्वत के शिखर के समान उच्च परंतु उसी के समान एकाकी हो जाना निश्चित है, क्योंकि तब अपने जीवन की पूर्णता के लिए उसे किसी संगी की अपेक्षा ही नहीं रहेगी। परंतु वास्तव में यह धारणा प्रत्यक्ष सत्य का उल्लंघन कर जाती है। अपने पूर्ण से पूर्ण विकास में भी एक वस्तु दूसरी नहीं हो सकती, यही उसकी विशेषता है। अतः उससे जो भिन्न है उसका अभाव अवसंभावी है। अपने पूर्ण से पूर्ण गौरव से गौरवान्वित स्त्री भी इतनी पूर्ण होगी कि पुरुषोचित स्वभाव को भी अपने प्रकृति में समाहित कर ले। एतएव मानव समाज में साम्य रखने के लिए उसके अपने प्रकृति से भिन्न स्वभाव वाले का सहयोग श्रेय रहेगा। इस दशा में प्रतिद्वंदिता संभव नहीं। पैराग्राफ चेंज, पृष्ठ 18। उसे अपने गुरुतम दायित्व के अनुरूप मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिए विस्तृत स्वाधीनता चाहिए। कारण, संकीर्णता में उसके जीवन का वैसा सर्वतोमुखी विकास संभव ही नहीं जैसा किसी समाज की स्वस्थ व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। मनुष्य अपने स्वभाव में कुछ संस्कार लेकर जन्म लेता है, जिनके परिस्थितियों के वातावरण में विकसित होने से उसका चरित्र बनता है। इसके अनंतर उसके जीवन का वह अध्याय प्रारंभ होता है जिसमें उसके चरित्र जनित गुण दोष संसार पर प्रतिफलित होने लगते हैं और संसार के उसके जीवन पर। सबके अंत में वह प्राकृतिक नियम के द्वारा अनेक मधुर कटु अनुभवों का संचय कर अपने जीवन के पर्यवेक्षण को तथा अपने अनुभवों को दूसरे के मार्ग का दीपक बनाने का अवकाश पा लेता है। जिस परिस्थिति रूपी सांचे में उसके चरित्र को ढलना पड़ता है, वह यदि विपरीत, अनुपयुक्त या विकृत हो तो चरित्र पर भी उसकी अमिट छाप रह जाएगी। और यह कहने की आवश्यकता नहीं कि विकृत चरित्र और अनुपयुक्त मानसिक विकास वाला व्यक्ति अपने निर्दिष्ट स्थान में न स्वयं सामंजस्य का अनुभव करेगा न किसी को करने देगा। और अंत में अनेक कटु अनुभवों से विषाक्त चित्त लेकर वह अन्य व्यक्तियों के मार्ग में भी सूल बिछाता चलेगा। फलतः जीवन की सबसे बड़ी और पहली आवश्यकता सामाजिक प्राणियों के स्वतंत्र विकासानुकूल वातावरण की सृष्टि कर देना है। जिस प्रकार यह सत्य है कि व्यक्ति द्वारा समाज निर्मित और परिवर्तित होता है, उसी प्रकार यह भी सत्य है कि मनुष्य समाज को लेकर नहीं वरन समाज में जन्म लेता है। एतएव उसका विकास ऐसा होना उचित है जिससे साधारण सामाजिक सिद्धांतों की रक्षा भी हो सके और समयानुकूल परिवर्तन भी। पुरुष के समान स्त्री भी कुटुंब, समाज, नगर तथा राष्ट्र की विशिष्ट सदस्य है तथा उसके प्रत्येक क्रिया का प्रतिफल सबके विकास में बाधा भी डाल सकता है और उनके मार्ग को प्रशस्त भी कर सकता है। प्रायः पुरुष का जीवन अधिक स्वच्छंद वातावरण में विशिष्ट व्यक्तियों के संसर्ग द्वारा बनता है और स्त्री का संसर्ग सीमा में परंपरागत रूढ़ियों से। पृष्ठ 19। जिससे न उसे अपने कुटुंब से बाहर किसी वस्तु का अनुभव होता है न अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान। कहीं यह विषमता और कहीं इसकी प्रतिक्रिया जीवन को एक निरर्थक रणक्षेत्र बनाकर उसकी सारी उर्वरता को नष्ट तथा सरसता को शुष्क किए दे रही है। पैराग्राफ चेंज। स्त्री के व्यक्तित्व में कोमलता और सहानुभूति के साथ साहस तथा विवेक का एक ऐसा सामंजस्य होना आवश्यक है जिससे हृदय के सहज स्नेह की अजर्स वर्षा करते हुए भी वह किसी अन्याय को प्रशय न देकर उसके प्रतिकार में तत्पर रह सके। ऐसा एक भी सामाजिक प्राणी न मिलेगा जिसका जीवन माता पिता भगिनी पुत्री आदि स्त्री के किसी न किसी रूप से प्रभावित न हुआ हो। इस दशा में उसके व्यक्तित्व को कितने गुरु उत्तरदायित्व की छाया में विकास पाना चाहिए यह स्पष्ट है। पैराग्राफ चेंज। स्वयं अपनी इच्छा से स्वीकृत युग दीर्घ बंधनों को काट देने के लिए हमें संसार भर की अनुमति लेने का न अवकाश है न आवश्यकता, परंतु इतना ध्यान रहना चाहिए कि बेड़ियों के साथ ही उसी अस्त्र से बंदी यदि पैर भी काट डालेगा तो उसकी मुक्ति की आशा दुराशा मात्र रह जाएगी। अपने व्यक्तित्व की और अपनी विशेषताओं की रक्षा न करते हुए यदि हमने अपनी रक्षा कर ली, यदि उन बंधनों के साथ हमारे जीवन का आवश्यक अंश भी घिस गया तो हमारा एक बंधन से मुक्ति पाकर दूसरे में बंध जाना अनिवार्य हो उठेगा। हमारी श्रृंखला की कड़ियाँ भाग 1 समाप्त।